हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मुंबई के लग्जूरियस इलाके में एक बड़ा सा बंगला था। वहाँ एक टेबल पर फाइलों का ढेर बिखरा हुआ था, जिसके सामने लगभग 65 साल का आदमी बैठा हुआ था। उसके साथ सम्राट मल्होत्रा था, वही सम्राट मल्होत्रा जो कुछ दिन पहले युग से टकराया था। युग ने राणा इंडस्ट्रीज के लिए जो प्लान बनाया था वो इम्प्लीमेंट करने के बाद उन दोनों के चेहरे पर निराशा के भाव थे। दूसरा आदमी सम्राट मल्होत्रा का बाप दिग्विजय मल्होत्रा था। दिग्विजय मल्होत्रा ने सम्राट की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, उसने हमें दूसरी बार मात दी है। बहुत प्लानिंग करके हम यहाँ पर आए थे, लेकिन क्या नतीजा निकला? तुमसे एक कंपनी तक टेक ओवर नहीं हो सकी। अब तक बिजनेस माफिया में हमारा नाम एक नंबर पर आता था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। सिर्फ एक कंपनी ही हाथ से गई है और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है डैड, सम्राट ने जवाब दिया। वो कुछ सोचते हुए से बोला, मैंने सब कुछ पूरे प्लान से किया था, फिर इतनी जल्दी उसने अपनी कंपनी को इतने बड़े लॉस से कैसे बचा लिया? ठीक वैसे ही जैसे वो तुम्हारी नाक के नीचे से चाइना जाकर दूसरे पड़ाव को पार कर लिया था, याद है ना? उस पड़ाव को हमने डिजाइन किया था और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमने ही ली थी, दिग्विजय मल्होत्रा ने सार्कास्टिक वे में कहा। उनकी बात सुनकर सम्राट इधर उधर देखने लगा। दिग्विजय जो भी कह रहे थे वो सच था। वो गहरी सांस लेकर बोला, मुझे अच्छे से पता है उसकी कोई कमजोरी नहीं है, और आप जानते हैं कि मैं उसकी बीवी पर वार नहीं कर सकता। बस यही हम पीछे रह गए, पता नहीं क्या सोचकर ये रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे। जो भी हो, हम उसकी पत्नी को टारगेट नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट वार करो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मुझे राणा इंडस्ट्री की बर्बादी चाहिए, दिग्विजय ने सख्त आवाज में कहा। दोनों वहां बातें कर रहे थे तभी एक लगभग 28 साल की औरत वहां पर आई। वो सम्राट की वाइफ मानवी मल्होत्रा थी। उसकी गोद में लगभग 3 साल का लड़का था। मानवी ने उनके पास आकर कहा, काम तो होता रहेगा, डिनर का टाइम हो गया है। सम्राट ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, हम यहाँ नए नए सेटल हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दक्ष को अंडर एस्टिमेट करेंगे। तुमने किसी अच्छे प्ले ग्रुप को देखा जिसमें हम इसका एडमिशन करवा सकें? सम्राट के बेटे का नाम दक्ष था। मानवी ने उसकी बात पर हामी भरी। वो आपस में बात कर रहे थे तभी उनके घर के एंट्रेंस का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही उन सबका ध्यान उस तरफ चला गया। सामने से मौलिक चलकर आ रहा था। दिग्विजय ने मौलिक की तरफ देखकर गहरी सांस लेकर कहा, चलो, हमारे छोटे साहबजादे को याद तो आया कि हम भी इसके फैमिली मेंबर हैं, वरना मुझे लगा था इसकी पूरी जिंदगी प्रोफेसरगिरी में निकल जाएगी। उनकी बात सुनकर सम्राट के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। मौलिक उनके पास आया और उसने उज्ज्वल के गाल खींचे। फिर मौलिक ने सम्राट और दिग्विजय की तरफ देखा। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे और उसने उसी लहजे में कहा, मुझे आपसे बात करनी थी। आपके पास तो सबकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका काम ही ऐसा है, मुझे राणा इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कशन करना है। मौलिक के मुंह से राणा इंडस्ट्री का नाम सुनकर दिग्विजय और सम्राट चौंक गए। वो ऐसा शख्स नहीं था जो बिजनेस वगैरह में इंटरेस्ट ले या किसी भी तरह की राइवलरी में। बिजनेस की बातें होने पर मानवी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सम्राट ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम किसी कंपनी के बारे में पूछ रहे हो, तुम्हें तो हमारा काम पसंद ही नहीं था, अचानक तुम्हें हमारी जरूरत कैसे पड़ गई? एक्चुअली मेरी यूनिवर्सिटी में कृषा सिंघानिया, कृषा योगराणा ने एडमिशन लिया है। मुझे वो लड़की काफी फिशी लगी। हमारी यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर, जो काफी उसूलों वाला है, वो योगराणा के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। ऐसा क्या है उनकी फैमिली में जो वो इतना डर रहा था? मुझे उसकी पत्नी के बारे में सब कुछ जानना है, मौलिक ने उन्हें सीधे सीधे सब कुछ बता दिया। कृषा का नाम आते ही दिग्विजय और सम्राट को जैसे सांप सूंघ गया हो, उन्होंने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा और फिर सम्राट ने कोल्ड वॉइस में कहा, उस लड़की से दूर रहो और गलती से भी उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में मत सोचना। मौलिक ने कंधे उठाकर कहा, मैं उसे क्या नुकसान पहुंचाऊंगा? मैं बस उसके बारे में पता लगाकर उसे एक्सपोज करना चाहता हूं। वो दिखने में जितनी मासूम है, उसकी सच्चाई उतनी ही गहरी नजर आती है, और आपके चेहरे बता रहे हैं आप बहुत कुछ जानते हैं। जानते हैं तभी कह रहे हैं उससे दूर रहो, दिग्विजय ने तेज आवाज में कहा और फिर वहां से उठकर चले गए। उनके जाने के बाद सम्राट भी चला गया था। मौलिक को हैरानी हो रही थी कि उसका बाप और भाई जो बिजनेस माफिया थे, उन्होंने हर छोटी बड़ी कंपनी को टेक ओवर करके उन्हें बर्बाद कर दिया था। वो आज कृषा सिंघानिया जैसी मामूली लड़की के नाम पर परेशान दिख रहे थे। अब तो मुझे पक्का यही लग रहा है कि जरूर दाल में कुछ काला है, मौलिक ने खोए हुए अंदाज में कहा, और अब उसके इरादे और भी मजबूत नजर आ रहे थे। वहीं दिग्विजय और सम्राट जब अंदर जा रहे थे तब दिग्विजय ने सम्राट से कहा, मौलिक को इन सब मामले से दूर रखना, वैसे भी वो हमारे बिजनेस के पीछे पड़ा रहता है, अगर युग राणा कौन है उसकी सच्चाई उसके सामने आ गई तो उसके अंदर फिर से देशभक्त की आत्मा जाग जाएगी और वो पुलिस के पास पहुंच जाएगा। हाँ, और मुझे अपने भाई की जान बहुत प्यारी है, सम्राट ने जवाब दिया। फिर वो बात बदलते हुए बोला, वैसे मैंने एक तरीका निकाला है जिससे राणा इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया जा सकता है। कई बार सामने वाले के राज जानने के लिए उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, फिर कल ही एक अच्छा सा प्रपोजल लेकर राणा इंडस्ट्रीज पहुंचो। पहली बार किसी जगह हार का सामना करना पड़ा है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला मैं उन्हें, दिग्विजय ने जवाब दिया। सम्राट और दिग्विजय डाइनिंग टेबल पर पहुंच चुके थे। वहीं मौलिक को उसके सवालों के जवाब नहीं मिला तो वो वहां से अपने घर को जाने लगा। आज के दिन में मौलिक के सामने काफी कुछ हो गया तो वो खोए हुए अंदाज में गाड़ी चला रहा था। वो कुछ ही आगे पहुंचा होगा कि उसकी गाड़ी सामने किसी गाड़ी से जा टकराई। वो जिस गाड़ी से टकराया था उसमें कोई और नहीं बल्कि योग था और उसके साथ में कृषा भी।